السلام علیکم. ہم نے یہاں آپ کو اور اپنے آپ کو یہاں بٹھایا اس لیے کہ ہماری بھی تربیت ہو اور آپ کی بھی تربیت ہو. بس زندگی میں اصول اور کس چیز کو کس وقت تقدیم دینی ہے, کس چیز کو کس وقت مقدم رکھنا ہے, اس کی مدد بھی اللہ سے مانگا کریں کہ اللہ ہمیں چیزوں کو پرائرٹائز کرنا سکھا دے. چلیے دعا کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اے ہمارے اللہ, ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ العنکبوت آیت نمبر 29 پر ہم بات کر رہے ہیں, جہاں پر اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کا قصہ بتایا اور لوط علیہ السلام کی قوم کے کرائمز آپ کو اس آیت میں ملتے ہیں. اسی آیت پر ہم ڈسکشن کر رہے تھے. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ, کیا تم وہ لوگ ہو جو کہ مردوں کے پاس شہوت کے لیے, سیکشل ارج کو پورا کرنے کے لیے آتے ہو. وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ, اور تم اس طریقے کار کو کاٹتے ہو جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَر, اور تم اپنے اس گناہ کو اوپنلی پراؤڈلی کرتے ہو. فما کان جواب قومہ الا ان قالوا, تو ان کی قوم کا جواب کچھ نہ تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا, ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین, اس عذاب کو, اس سزا کو لے آؤ اگر تم سچے ہو جس کا تم دعویٰ کرتے ہو. ہم پچھلی کلاس میں لوط علیہ السلام کی قوم کا جو کرائم ہے ہومو سیکشویلٹی کا, اس کے اوپر گفتگو کو شروع کر چکے ہیں اور آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ ہومو سیکشویلٹی ایسی بیماری یا ایسا گناہ نہیں ہے جو صرف ویسٹرن کنٹریز کا ایشو ہے. ہمارے سکولز, میں سکولز کہہ رہی ہوں, اور سکولز کے اندر آپ کے سیکنڈری لیول کے سکولز کے اندر بھی بات ہو رہی ہے. مجھے نہیں پتا آپ کے بچے آپ لوگوں سے کتنی ڈسکشنز کرتے ہیں, لیکن سکولز کے اندر بھی بچے ڈکلیئرڈ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے سامنے ہومو سیکشوئل کہتے ہیں. ہمارے اپنے کراچی شہر کی بات ہو رہی ہے. سو اٹس اے ایشو, اٹس اے ویری کرنٹ کنٹمپرری ایشو اور بہت سیریس ایشو ہے امنگ دا اسکالرس. ہمیشہ سے صحابہ سے لے کر آج تک کنسنسز رہا ہے اس بات کے اوپر کہ کسی اسکالر نے بھی ہومو سیکشوئلٹی کی کسی اینگل سے بھی گنجائش نہیں نکالی. اٹس اے کلیئر کٹ کرائم, کلیئر کٹ کبیرہ گناہ ہومو سیکشویلٹی. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہیں سو یہ قرآن کے اینگل سے حکم الجاہلیہ کے اندر آتا ہے. آپ میں سے جن لوگوں نے قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے آپ کو معلوم ہوگا حکم الجاہلیہ کیا ہے. حکم الجاہلیہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر اگنورنس کے اندر, جاہلیت کے اندر انوالو کرنا. آپ دیکھیں آج کا دور, آج کے ٹائم میں ہومو سیکشویلٹی کی ایکسیپٹنس بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی بڑھ رہی ہے کہ یہ جو تھراپسٹ اور سائیکائٹرسٹ وغیرہ ہوتے ہیں ان سے یہ, ان کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. مجھے پاکستان میں زیادہ آئیڈیا نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان میں سسٹمز بہت اچھے کام نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ کہ جنرلی اگر آپ ورلڈ وائڈ دیکھیں سو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے. خاص طور پر امریکہ کے اندر تو اب یہ چیز باقاعدہ وربلی کہی جا رہی ہے تھراپسٹ کو, اور ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہے, جو کاؤنسلنگ کرنے والے سائیکائٹرسٹ یا تھراپسٹ ہوتے ہیں, اگر کوئی آپ کے پاس ینگ بچہ آ کے یہ بات کہے کہ مجھے سیم سیکس کے اندر یا سیم جینڈر کے اندر اٹریکشن فیل ہوتی ہے, آئی ایم فیلنگ دیٹ آئی ایم ہومو سیکشوئل, سو سائیکائٹرسٹ اور تھراپسٹ کو یہ ٹریننگ دی جاتی ہے. اور بائی لا وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سم تھنگ از رانگ ود یو. یعنی اگر لڑکا آ کے یہ بات کہتا ہے ایک تھراپسٹ سے کہ مجھے ایک سیکشل اٹریکشن, فزیکل اٹریکشن ایک مرد کی طرف ہوتی ہے, تو تھراپسٹ اس کو یہ نہیں بتائے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود یو, لیٹ می ہینڈل دس, अगर वो कहेगा ये तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है. नाउ दिस इज अ नोन फैक्ट इन अमेरिका, उसका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं. इसलिए कि वो वहां पर अपने थेरेपिस्ट को ये कह रहे हैं कि आपको सिंपली ये कहना है कि इट्स ओके अगर आपका विम ऐसा है, अगर आपकी इंटरनल डिजायर, आपका लोअर सेल्फ आपको ये कहता है कि आपको सेम जेंडर में अट्रैक्शन हो रही है, इट्स ओके, लिव विद योर चॉइस. जैसा आपके अंदर से ख्वाहिश आ रही है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारी है. एंड दिस इज द थेरेपिस्ट जिसके पास पूरा कंट्रोल और इख्तियार होता है कि वो इंसान को मैनिपुलेट कर सकता है. आपको अंदाजा होगा, आप में से जिन लोगों ने साइकोलॉजी पढ़ी है, साइकाइट्रिस्ट थेरेपिस्ट सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत आसानी से, जिस तरफ ले जाना चाहें वो ले जा सकते हैं, जबी तो वो थेरेपिस्ट बनते हैं. लेकिन अगर खुद थेरेपिस्ट ही उसके उस विम को एनकरेज करेगा, यानी जो उसकी सेक्सुअल डिजायर जिस डायरेक्शन में भी जा रही है उसको डायरेक्शन नहीं देगा बल्कि कहेगा इट्स ओके लिव बाय योर विम, तो फिर इसका मतलब है कि इस्लाह का काम तो कहीं हो ही नहीं रहा है. और आप खुद सोचें, बहुत मामूली सी बात है, जो भी अंदर से ख्वाहिश उठती है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो. अगर ये उसूल हर कोई अपना ले तो क्या होगा दुनिया के अंदर? एनार्की नहीं हो जाएगी? फसाद नहीं मच जाएगा? आप क्या, मेरा दिल चाहता है मैं हर एक को जिसको देखूं उसको एक थप्पड़ लगाती रहूं और मैं कहूं हां जो आपका दिल करता है करें? अब यहां कोई आए और उठे चले, मैं नाम ले रही हूं, बुरा नहीं मनाएगा, नजीहा, नजीहा एडमिनिस्ट्रेटर है, और नजीहा कहे मेरा तो बस अंदर से मुझे क्रेविंग होती है, मुझे जो नजर आए मैं उसको एक थप्पड़ लगा दूं, और हम कहें हम मॉडर्न वर्ल्ड के रहने वाले लिबरल लोग जैसे चाहो जियो, आपका दिल चाहता है थप्पड़ लगाएं, लगाएं थप्पड़, फील फ्री. ऐसे दुनिया नहीं चलती. अगर अल्लाह ने इंसान बनाया है, आप और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अल्लाह की बड़ी रहमत है, इतनी रहमत है कि अगर सजदे में इसी शुक्र में झुके रहें तो सर उठाने का मौका ना मिले, हकीकत है. वरना जिस तरफ इंसानियत इस वक्त भटक रही है, आपकी और मेरे पास ये लग्जरी है, दुनिया कुछ कहती रहे, साइंस कुछ कहती रहे, सेक्युलरिज्म कुछ कहता रहे, कभी कभी आपके पास बीइंग अ मुस्लिम दलील नहीं भी होती है, हर दफा दलील नहीं होती है, लेकिन आपको जो चीज पुरसुकून कर देती है वो एक ख्याल, बस अल्लाह ने कहा है तो ठीक होगा, एंड ऑफ द स्टोरी. क्या इतने लंबे लंबे किस्से कहानियां सुनाने, कभी कभी ये जुमला भी काफी होता है. मगर जिस दुनिया में आप और मैं रहते हैं वहां रीजनिंग की, लॉजिक की, दलाइल की जरूरत होती है. इसीलिए पढ़ा लिखा इंसान कोशिश करता है कि अपने आप को आसपास की दुनिया से कनेक्ट करके रखे और देखे कि उसने इस पैगाम को आम कैसे करना है. जो जैसे चाहो जियो, जो तुम्हारा लोअर सेल्फ कहे वो करते रहो, इस तरह से दुनिया नहीं गुजरती है. अल्लाह ने इंसान को आकिल मखलूक बनाया है, और मैंने आपको इकाल के बारे में पिछली क्लासेस में ये बात बता दी थी कि आपको अपने आप को, अपनी अकल को रिस्ट्रिक्ट करके रखना होता है, बाउंड्रीज के अंदर रखना होता है. इमेजिन करें, आप और मैं तो औरत हैं, मैं अंदाजा नहीं है, आपके बेटे हैं, कभी अपने शौहरों से पूछिए इस बात को, सच बोलेंगे, हमेशा गलत नहीं बोलेंगे. एक टीन एज लड़के के दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते हैं. यूजुअली मर्द के अंदर अल्लाह ने सेक्सुअल अर्ज ज्यादा रखी है, कुछ औरतों में ज्यादा होती है, लड़कियों में ज्यादा होती है, बट जनरली लड़कियां सिर्फ सेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचती. आप में से जिनके बेटे हैं आपको ये बात अच्छी तरह मालूम होगी और होनी चाहिए. बीइंग अ मां, एक टीन एज लड़के के दिमाग में हर वक्त सेक्स का एंगल बहुत स्ट्रांग होता है. याद रखें, जब वो किसी औरत को देखता है, खुदा ना खास्ता ये नहीं है कि अब हर वक्त जिसको भी देखेगा उसको होगा, बट इन कंपैरिजन टू अ गर्ल, लड़के के दिमाग में जो जो ख्यालात आते हैं, आप इमेजिन करें, आप उसके ऊपर से बैरियर हटा दें, आप रिस्ट्रिक्शन हटा दें, क्या कुछ कर सकता है वो? वो फिर खाली विंडो शॉपिंग नहीं करेगा, क्या करेगा वो? शीशा तोड़ेगा, जिससे दिल करेगा अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा. और ये हो रहा है दुनिया में, और फिर औरतों से इतनी ख्वाहिश पूरी हो गई कि अब औरतों में कोई अट्रैक्शन फील नहीं होती है. होमोसेक्सुअलिटी की तरफ माशरा बढ़ा, होमोसेक्सुअलिटी में भी इतना माशरा पड़ा कि फिर मर्दों के साथ मर्दों को और औरतों के साथ औरतों को अट्रैक्शन नहीं रही, तो फिर माशरा कहां गया? रिस्ट्रिक्शन हटी थी ना, असफला साफिलीन तो बनना था, अब माशरा पीडोफीलिया की तरफ है. अब ना औरत अच्छी लगती है, ना मर्द अच्छे लगते हैं, बच्चे अच्छे लगते हैं. दिस इज द फसाद, दिस इज द एनार्की. जब आप रिस्ट्रिक्शंस हटाएंगे, दुनिया कभी भी सीधी तरह से बैलेंस खड़ी नहीं रह सकती. और आप और मैं इस दुनिया का वो एक छोटा सा परसेंटेज हैं जो इस टिल्ट हुई हुई दुनिया को, और समझ लें इस वक्त 1.7 बिलियन में से समझ लीजिए कि आप मुसलमानों में भी अगर देखें शायद कुछ मिलियन होंगे जो इस टिल्टेड वर्ल्ड को सीधा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद मुट्ठी भर मुसलमान 1.7 में से हैं, शायद 7 मिलियन ही हो, बहुत हो गया तो 70 मिलियन होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। इसलिए कि इल्म हासिल करने वाले बहुत हैं बट माशरे की डायरेक्शन बदलने वाले बहुत कम हैं। इंफॉर्मेशन गैदर करने वाले मुसलमान तो बहुत हैं, मदरसे भरे हुए हैं। हुफाज की कमी है पाकिस्तान में, हुफाज की कमी है दुनिया में। सोमालिया में आप जाइए, सोमालिया एक ऐसा मुल्क है जहां वो बच्चों को कुरान ऐसे हिफ्ज कराते हैं जैसे हम नाजरा कराते हैं। आपको अंदाजा है सोमालिया में कितने हुफाज होते हैं? हर बच्चा 3 साल में कुरान हिफ्ज कर लेता है। फोटोग्राफिक मेमोरी है उन लोगों की। अगर आप कभी किसी सोमालिया के खतीब का खुतबा सुने, सो 40 मिनट्स तक बगैर देखे अहादीस कुरान अहादीस कुरान अहादीस कुरान बयान करता है। इतनी अच्छी मेमोरी रिटेनिंग पावर है। सो इंफॉर्मेशन की तो कमी नहीं है मगर उनको अहकामात की हिकमत, अहकामात के ऊपर माशरे में स्टैंड लेना और अपने उस इल्म के जरिए दुनिया में तब्दीली लेकर आना। कहाँ है सोमाली नेशंस? कितने साइंटिस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं? कितना इंटेलिजेंसिया वो जो कुरान और हदीस का इल्म रखने वाला है, वो सिर्फ कुरान नहीं हिफ्ज करते सोमालिया वाले, उनके पास अहादीस का भी कलेक्शन है, याद करते हैं हिफ्ज करते हैं, अहादीस के हुफाज हैं वहां पे, अहादीस को सीनों में ऑब्जर्व करके उनको प्रिजर्व किया गया है। हम ऐसे ही मुसलमान हैं इस वक्त। सो आप और मैं तो चंद मुट्ठी भर लोग होंगे जो इस टिल्टेड माशरे को, इस टिल्टेड दुनिया को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका पैर जमना कितना जरूरी है, आपका अपना एंकर मजबूत होना कितना जरूरी है। खुद पांव जमे हुए होंगे तो गिरते हुए को खड़ा कर सकेंगे, वरना ज्यादातर क्या होता है जब प्रेशर आप दूसरे पर लगा रही होती है, हाई टाइड आती है और आप हाई टाइड में भागकर किसी को बचाने की कोशिश करती हैं, आप अपनी ग्रिप लूज कर जाती हैं बिकॉज आपके फर्म फीट ग्राउंड के अंदर सैंड के अंदर नहीं जमे हुए होते। सो अपनी पोजीशन को समझें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, अपने इल्म का बेहतरीन इस्तेमाल करें। माशरा इस वक्त ऑलमोस्ट इतना टिल्टेड है कि गिरने वाला है। दुनिया को तो हम बाद में देखेंगे, अपने कराची शहर को देख लें। अगर यहीं हम कुछ तब्दीली लाने वाले बन गए और अगर हम कराची शहर की ना भी बात करें, अपने अपने 2 इंच के टुकड़ों के घरों की बात कर लें, अगर हम अपने घरों के अंदर ही तब्दीली लाने वाले बन जाते हैं, सो इंशाल्लाह अल्लाह के हाँ कह सकेंगे कि अल्लाह हमने कोशिश की थी, टूटी फूटी ही थी, कोशिश की थी। और आपकी अपने घर की कोशिश का इम्पैक्ट बाहर जरूर जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप जान लगा दें अपने घर में इस्लाम नाफिज करने की और अपने 5 फुट के जिस्म पर इस्लाम नाफिज करने की, और आप दिन रात लगा दें अल्लाह के दीन को खड़ा करने के लिए और उसका इम्पैक्ट आपके घर से और आपकी जात से बाहर ना निकले। इट्स इम्पॉसिबल, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब है मैं कोशिश नहीं कर रही हूं। सो माशरा इस वक्त जिस तरफ जा रहा है, वो सिंपल एक तरीका जो आपकी और मेरी यूथ और औलादों के अंदर डाला जा रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान मुल्कों के अंदर हर घर की यही कहानी है, चाहे वो लंदन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो अफ्रीका है, चाहे वो अरब एमिरेट्स है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, हर घर की यही कहानी है। बच्चे कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जाती हैं, एंड दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ लिबरल माइंड, दिस इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ सेक्युलर माइंड, ये हो रहा है। और एंटायर आइडिया जो कुरान देता है वो सिर्फ एक मेन आइडिया इस पूरी बहस में है, रिस्ट्रिक्ट योर अकल, अपनी अकल को कंट्रोल करके रखो। इसको छोड़ेंगे बेलगाम तो यह आपको बार बार मुंह के बल गिराएगी, और गिर रही है इंसानियत इस वक्त बार बार मुंह के बल, इसलिए कि खुदा को भूल गई, सो अपनी हकीकत भी भूल गई है। इस टॉपिक के ऊपर अपनी क्लैरिटी हासिल करना और इस टॉपिक के ऊपर अपने बच्चों को भी डिस्कशंस का हिस्सा बना, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप अपने बच्चों से इस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, कोई शर्म की बात नहीं है। दुनिया आपके बच्चों से डिस्कशंस करती रहे, आपके बच्चे दुनिया से डिस्कशन करते रहें, और माँ से डिस्कशन ना कर सकें, इसलिए कि माँ डिस्कशन करेगी तो माँ को पता चलेगा कि मेरे बच्चे के दिमाग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। इस वक्त जिस तरफ ये दुनिया बह रही है उसमें सिंपली आपको मैंने एक बात बताई थी कि ये कहा जा रहा है कि बायोलॉजिकली सब इंसान एक ही जैसे हैं। ये बात आपको मैंने बताई थी। द जेंडर थ्योरी इज वेरी पॉपुलर इन सेक्युलर साइकोलॉजी नाउ। अगर आप में से किसी ने द जेंडर थ्योरी पढ़ी है, वो द जेंडर थ्योरी में उन्होंने जेंडर और सेक्सुअलिटी को बिल्कुल अलग अलग कर दिया है कि एक इंसान की जेंडर अलग होती है और उसकी सेक्सुअल फीलिंग्स बिल्कुल अलग होती हैं। इस चीज को उन्होंने अलग किया और उन्होंने कहा है कि ये जो इंसान की सेक्स डिटर्मिन होती है ये उसके अपने माइंडसेट से होती है। इट हैज नथिंग टू डू विद द जेंडर। यहीं से शुरू हुई है होमोसेक्सुअलिटी। आप मर्द हैं तो इससे जरूरी नहीं है कि आपको अट्रैक्शन औरत की तरफ ही हो। आपका माइंडसेट औरत में अट्रैक्शन महसूस करता है या मर्द में महसूस करता है, दैट विल डिफाइन एक्चुअली योर जेंडर। सो जेंडर और सेक्सुअलिटी को अलग किया गया है। दिस इज अ वेरी फेमस द जेंडर थ्योरी इन साइकोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेंटल साइंसेस। इसको प्रमोट किया जा रहा है और बहुत तेजी से प्रमोट किया जा रहा है। साइंटिफिक फील्ड्स के अंदर बहुत पॉपुलर थ्योरी है। इसमें जो मेन आपको मैंने थीम बता दिया वो कहते हैं कि जेंडर और सेक्स अलग अलग है। अब अगर आपका बच्चा आपको आकर कहता है तो आपने अपने बच्चे को कहां से और किस तरह से इस बात को डिफाइन करना शुरू करना है, इसकी तालीम आपकी और मेरे पास होनी चाहिए। इसलिए आप और मैं यहां आकर बैठे हैं कि हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि हम दीन की चंद तालीमात और हम ये देख लें कि वजू कैसे करना है, हम ये देख लें कि नमाज में मुझे जो है वो रुकू में अपना एंगल क्या रखना है। ये सब चीजें अल्हम्दुलिल्लाह हमें सब जगह पर पता चल जाते हैं और मेनली यहाँ जितने भी लोग आकर बैठे हैं उनको मालूम है कि जलसा इस्तराहत क्या होता है या क्याम की तस्वीहात क्या होती हैं या कौमे की तस्वीहात क्या होती हैं। दिस इज द मेन थीम। बिल्कुल है, इसकी भी अपनी जगह वैल्यू है। बट इस वक्त आपके बच्चे को इसकी फिक्र नहीं है कि आपको दो सजदों के दरमियान में कौन सा जिक्र करना होता है। आपका बच्चा तो इस वक्त मुसलमान बना रह जाए, यही बड़ी बात है। ये कंसर्न है इस वक्त आपका और मेरा। सो वो काम फिर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पहले तो उसको कन्विक्शन ये दे दें कि वो मुसलमान क्यों है, इसका जवाब आना चाहिए। दिस इज द मेन थिंग। हम कहते हैं, हम शुरू करते हैं, पांच वक्त की नमाज फर्ज है। पांच वक्त की नमाज फर्ज है, लेकिन वो पांच वक्त की नमाज फर्ज होने की अहमियत उसको उस वक्त तक नहीं पता चलेगी जब तक उसको ये नहीं पता चलेगा कि मैं मुसलमान क्यों हूं। जब ही तो हम मुसलमान अपनी आइडेंटिटी लूज कर रहे हैं। माएं नमाज पढ़ती हैं, बाप नमाज पढ़ते हैं, औलादें नमाज नहीं पढ़ती, बिकॉज औलाद को ये नहीं पता कि मैं मुसलमान क्यों हूं। क्यों मैं मुसलमान घराने के अंदर पैदा होने की वजह से बाउंड हूं कि मैं वही सारे रिचुअल करूं जो मेरे माँ बाप करते हैं। किसने इतना ज्यादा इस चीज को कन्फर्म करके बाउंड कर दिया है? तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। इंसान पढ़ा लिखा मुसलमान होते हुए आपकी और मेरे पास ये बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दुनिया में कौन सी थ्योरीज प्रमोट हो रही हैं और उन थ्योरीज को किस तरह से रिफ्यूट किया जा सकता है या एटलीस्ट उनके लिए डायलॉग किए जा सकते हैं। दिस इज अ हाई टाइम कि पढ़ी लिखी औरत इस चीज का इल्म हासिल करे।